ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد و آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، فعن ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل طیبا و عمل فی سنت و من الناس بوائقه دخل الجنہ وقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد۔ یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا، آدمی نے غذا کھائی، و عمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، و من الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے مامون رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں آج کل بہت سارے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر نسخہ امت کو بتلایا ہے، جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے حلال غذا، یعنی آدمی کی کمائی حلال طریقے سے ہو۔ کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک اہم چیز کمائی بھی ہے۔ اگر کمائی صحیح ہے، حلال ہے، درست ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو اس سماج کے اخلاق، اعمال، عادات، ساری چیزیں درست اور بہتر ہوں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر کمائی کے اندر بگاڑ ہے، خرابی ہے، شریعت کے خلاف پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے، تو وہ سماج بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں کمائی کی حلت اور اس کے حلال ہونے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ خالص حرام تو دور کی بات رہی، ذرا سا شبہ بھی اگر ہو تو وہ اس کو ہاتھ لگاتے نہیں تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، آپ کی تجارت کپڑوں کی تھی، آپ کے ایک شریک تھے، پارٹنر تھے، جن کا نام تھا حفصہ ابن عبد الرحمن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کپڑوں کے چند تھان تاکے دیے اور یوں فرمایا، ایک تاکے کی طرح اشارہ کر کے فرمایا، اس کے اندر ذرا سا عیب ہے، جب تم یہ بیچو تو خریدنے والے کو اس عیب کا پتہ بتا دینا، اس کو اطلاع کر دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، کھول کے بتا دیجیے، تاکہ وہ اس کو سمجھ کر، جان کر کے خریدے۔ हो गई बात। बाद में उनके पास कोई ग्राहक आया और वो सारे थान कपड़े के खरीद करके ले गया। इत्तेफाक की बात कि उनको उस कपड़े को बेचते वक्त याद नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि जानबूझ करके उन्होंने वह ऐप छुपाया हो, भूल गए, उसकी तरफ से सहवा हो गया, गफलत हो गई और चूक गए और उसको बताना भूल गए। और उन कपड़ों के थान की कीमत 20,000 दिरहम, आजकल के हिसाब से तकरीबन 63 किलो सोना, 63 किलो चांदी होती है। वो लेकर के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम साहब ने पहला ही सवाल किया कि वो ऐप जो था वो खरीदने वाले को बताया था? उन्होंने अर्ज किया कि मैं तो बिल्कुल भूल गया, चूक गया। का कौन है जरा मालूम करें। जुस्तजू की, तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। तो पूरी की पूरी रकम 20,000 दिरहम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सदका कर दिया और एक पाई खुद एक उसमें से नहीं ली। इतना ही नहीं, ये जो हफ्स इब्न अब्दुर्रहमान थे उनके साथ आइंदा के लिए पार्टनरशिप खत्म कर दी। कि जो आदमी मामलात के अंदर इतनी गफलत बरतता हो, ऐसे आदमी के साथ मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा। ये हमारे अकाबिर और बुजुर्गों का हाल था। माल को हलाल हराम के इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी अहमियत बतलाई है। मिश्कात शरीफ में रिवायत है, तलबुल हलाल फरीजतुन बादल फरीजा। इस्लाम के जो बुनियादी फराइज हैं, अरकान हैं, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो 5 अरकान हैं, उनके बाद हलाल कमाई हासिल करना ये भी एक फ़र्ज है। वह इसकी हैसियत उन 5 अरकान के बाद की उसका दर्जा, लेकिन इसको भी फ़र्ज करार दिया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यकबलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह ताला की जात पाक है और अल्लाह ताला पाक माल को ही कबूल फरमाते हैं। यानी कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में हलाल और पाकीजा माल खर्च करता है, उसी को अल्लाह तबारक व ताला अपने यहाँ शर्फ कबूलियत अता फरमाते हैं। कोई आदमी अगर हराम देता है तो अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होता। वह अल्लाह ताला के यहाँ भी सदके के कबूल होने के लिए जरूरी है कि वो हलाल कमाई हो। तिर्मिजी शरीफ हदीस की बहुत बड़ी किताब है, तो हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ाई जाती है। उसकी पहली ही हदीस है, ला तुकबलु सलातुन बगैर तुहूरी वला सदकतुन मिन गुलूली। बगैर पाकी के, बगैर वुजू के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से किया गया सदका कबूल नहीं होता। आजकल तो लोगों ने क्या समझ रखा है, दो चार को सुना दो और फिर कुछ मस्जिद में और मदरसे में दे दो, गया उसके बाद अंदर से कुछ मस्जिद मदरसे में दे देना, ये जो हराम तरीके से लिया गया था उसकी क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। नऊज़ु बिल्लाह, कहाँ सफाई। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े इमाम फकीह भी हैं और सूफी भी हैं। फरमाते हैं कि कोई आदमी हराम माल में से सदका करे तो ये कबूल नहीं होता। कहा कि कपड़े को जो नापाक हो उसको पेशाब के जरिए से कोई आदमी अगर धोवे तो वो कपड़ा पाक नहीं होगा। पेशाब खुद नापाक, इसी तरीके से हराम माल के जरिए से दिया गया सदका वो भी नाजायज है ना। अब उसके जरिए से ये कैसे पाक हो सकता है? वो तो हलाल तरीके से अगर दिया जाए कमाया हुआ तो ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है। बहरहाल ये आजकल हमारे माशरे में हम देखते हैं नहीं, पहले जैसा एहतमाम था नेकियों का और माशरे में जैसी अच्छी बातें थी और शर्म हया थी और जो है एक दूसरे का लिहाज था, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह ये कमाई के मामले में बेएहतियाती है। जरूरत है कि उसके अंदर खूब एहतियात। आजकल जब से जमीनों के दाम बढ़ गए तब से तो आप जानते हैं लोग किसी न किसी तरीके से किसी की भी जमीन अपने नाम पे करके उसको बेचने की बात गया, उसमें कोई ऐब ही नहीं समझा जाता। पहले जमाने के अंदर किसी की एक पाई को भी नाजायज तरीके से लेने को बहुत बड़ा गुना समझते थे और उससे बचने का एहतमाम किया जाता था। वरना ये हलाल हराम कमाई जो है ना उसके असरात औलाद के अंदर भी आते हैं। हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब रहमतुल्लाह अली की जबान से मैंने खुद ये किस्सा सुना है कि एक बुजुर्ग थे और उनके यहाँ उनके उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुआहदा किया, मामला किया, एग्रीमेंट किया कि देख हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो तो हम हलाल गिजा का एहतमाम करें, कोई हराम लुकमा अपने मुंह में न जाने दे, तू भी उसका एहतमाम कीजिए, मैं भी उसका एहतमाम करूंगा। बात दोनों मियां बीवी ने आपस में तय कर ली। अब बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद कहीं चोरी में पकड़ा गया। वो बुजुर्ग जो है तलवार लेकर अपनी बीवी के पास गए और कहा सच सच बता तूने क्या खयानत की थी कि बच्चा चोरी में क्यों पकड़ा गया? तेरी मैंने तो कुछ किया नहीं, हम दोनों ने आपस में तय किया था, मुआहदा किया था, तेरी तरफ से क्या कोताही हुई थी? उसने इकरार किया कि जिस जमाने में ये बच्चा मेरे पेट में था हमारे पड़ोस के पहाड़े में जो है बेरी का दरख्त है, उसकी एक टहनी हमारे घर की तरफ थी, उस पर एक बेर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकर मैंने उसको खा लिया, उसका यह असर है जो आज जाहिर हुआ। तो हराम जो है ना, हराम गिजा अपना असर दिखलाती रहती है, इसीलिए बुजुर्गों ने इसकी बड़ी एहतियात है ना, हराम से बचने की बड़ी एहतियात। एक मर्तबा कूफे के जंगलों में लूट हुई, लुटेरों ने डाकुओं ने एक काफला लूट लिया और उसके बाद उस काफले से लूटी हुई कुछ बकरियां कूफे के मार्केट के अंदर उन्होंने बेच दी। पता नहीं चला लोगों को, बाद में ये बात खुली और लोगों में ये मशहूर हुआ कि डाकुओं ने जो काफला लूटा था उसकी बकरियां हमारे कूफे के मार्केट में बिकी गया, यहीं के लोगों ने खरीदी होगी। जब ये सुना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आपने तहकीक की कि बकरी की उम्र कितनी होती है, बताया गया 6 या 7 साल। तो कूफा में रहते हुए कभी बकरी का गोश्त नहीं खाया, कहीं कुछ लूट के अंदर बिकी हुई बकरियों का गोश्त आना जाए खाने के अंदर, इतना ज्यादा ये हजरात हराम से बचने का एहतमाम करते थे। आजकल वो एहतियात नहीं रही, उसके असरात हम खुल्लम खुल्ला अपने मुआशरे में, अपने जो है खानदान में, अपने लोगों में देख रहे हैं। बहरहाल पहली चीज तो यह है कि आदमी हलाल पाकीजा गिजा का एहतमाम करे। वो रिवायत जो हजरत अबू हुरैरा की थी वो तो लंबी है, उसकी तशरीह में अभी नहीं जाना चाहता। दूसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वह अमेल फी सुन्नती, کہ حلال غذا کھانے کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کا اہتمام کیا. سنت پر عمل بہت اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا طریق زندگی پسند ہے, آدمی کس طرح زندگی گزارے وہ اللہ کو پسند ہے, وہ بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونے کے طور پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن میں باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہمیں ہر چیز میں, عقائد میں, اخلاق میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, ہر چیز میں, عقائد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور دوسری چیزیں جو ضروری ہے جن کا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے اس سلسلے میں بھی, اور عبادات نماز روزہ وغیرہ میں, اخلاق. اخلاق کا مطلب کیا؟ ہم یوں سمجھتے ہیں کوئی آدمی ذرا ہنس کر کے کسی کو السلام علیکم کیسے ہیں اچھے ہیں بس, کیا اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, نہیں. اخلاق ان کا تعلق آدمی کے دل سے ہے. دل جیسے ہمارے جسم کے کچھ اعمال ہیں, آدمی کا جسم نیکی کا کام کرتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, سچ بولتا ہے, یہ زبان سے سچ بولا, یا گناہ کا کام کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, تو کچھ کام وہ ہیں جو جسم نہیں بلکہ کون کرتا ہے, دل کرتا ہے, اور دل کے ان کاموں میں کچھ کام کرنے کے ہیں, کچھ کام بچنے کے ہیں. جیسے تکبر, اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو ہلکا اور کم سمجھنا, یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا, بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو, یہ دنیا کی محبت, دنیا کی محبت ہاتھ محبت نہیں کرتا, پاؤں اور آنکھیں محبت نہیں کرتی, محبت کون کرتا ہے؟ دل. اب یہ دنیا کی محبت یہ دل کا کام ہے, لیکن یہ گناہ ہے. اور یہ دل کی یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ ایک آدمی میں تکبر ہے تو یہ ایک گناہ نہیں ہے, اس تکبر کی وجہ سے معلوم نہیں وہ کیا کیا کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے آگے بڑھا جا رہا ہے, اس کی غیبت, اس کے اوپر غلط تنقید اور اس کی برائیاں بیان کرنا, یہ سب اسی اندر کی خرابی کا نتیجہ ہے. یا دنیا کی محبت ہے تو دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے اور غلط مال لوگوں کو سپلائی کرتا ہے, یہ غلط مال سپلائی کرنے پر کس چیز نے اس کو آمادہ کیا؟ دنیا کی محبت نے. یہ ایک چیز نہیں ہے, یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بے شمار گناہ اس سے وجود. چور کائی کو چوری کرتا ہے مال اور دنیا کی محبت کی وجہ سے, اسی طریقے سے بہت سارے گناہ اس سے ہوتے ہیں. اور اچھائیاں بھی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ دنیا سے بالکل بے رغبتی رکھے, جس کو زہد کہتے ہیں, یا توازو, اپنے آپ کو بے حیثیت بے حقیقت سمجھے, تو یہ دل ہی کا عمل ہے اور اس کی شریعت نے تاکید اس کو ضروری قرار دیا ہے, یہ اخلاق کہلاتی. تو عقائد ہوئے, عبادات ہوئی, اور اخلاق اور معاملات. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. اور ایک چیز ہے, پانچویں چیز ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا ہے, بیٹا باپ کے ساتھ کس طرح پیش آوے, بھائی بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آوے, پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے, یہ سب بتایا ہے کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. उसका खुलासा यह है कि इस तरह जिंदगी गुजारे कि किसी को हमारी जात से कोई तकलीफ न पहुंचे। ये खुलासा है माशरत के अंदर जितने भी अहकाम दिए गए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो शरीयत के मुताबिक हो जाएं, या ये इन सारी चीजों में आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। हमारे बुजुर्गों के यहाँ इसका कितना एहतमाम, हजरत हकीमुल उम्मत थानवी नवरल्लाहु मरकदहु एक मरतबा औरतों में बयान हुआ और उस बयान में हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकदहु ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत आती है हदीस की किताबों में कि एक जगह दावत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये जो है जो सालन पेश किया गया वो कद्दू के टुकड़े थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला शोरबा था उसमें कद्दू के टुकड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनको आप बड़ी रग़बत से उसको नौश फरमा रहे हैं, खा रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं बस उस दिन से मुझे भी कद्दू बड़ी मरहूब हो गई, बड़ी भाने लगी। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वाज में ये बयान किया, मस्तूरात के अंदर था वाज। उन मस्तूरात में हजरत की अहलिया मोहतरमा भी थी। अब दूसरे दिन दस्तरखान पर कद्दू, ठीक कोई ये नहीं खाया। फिर तो रोजाना जो है कद्दू आ रहा है बराबर दस्तरखान पर, हजरत का ध्यान नहीं गया। दो चार दिन के बाद पूछा क्या बात है ये रोजाना कद्दू, तो अहलिया ने जवाब में कहा आप ही ने तो उस दिन जो है बयान के अंदर फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत मरगूब थी। उस दिन से मैंने अपना हमारे घर का जो ये लाता है मार्केट लाने वाला खादिम है ना उसको ताकीद कर दी कि बाजार में जब तक कद्दू मिलती हो जरूर लाना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं लरज गया कि एक औरत का जज्बा देखो। चुनांचे हजरत फरमाते हैं कि मैंने सारे काम रोक दिए। हजरत के सारे, हजरत का तो पूरा एक निजाम था 24 घंटे का, सारे काम बटे हुए थे, औकात तय थे, टाइम टेबल के मुताबिक होता था, का सब बंद करके मैंने अपने आप को फारिग कर लिया। और क्या काय के लिए, ये सोचने के लिए कि मेरी जिंदगी के तमाम शोबे अकाइद अखलाक इबादत मामलात और माशरत सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं। 3 रोज तक सब छोड़ छाड़ के मैं उसी का पूरा जायजा लेता रहा, सर्वे किया मैंने अपनी जात का। 3 रोज के बाद जब ये सब मैंने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोई चीज सुन्नत से हटकर नहीं थी। देखो उनकी जिंदगी, उसके बावजूद ये गया वाकया इनको इतना असर कर गया। और हमारी जिंदगी में नहीं है तो भी ऐसा सुनते हैं तो भी कभी हमें तौफीक नहीं होती कि अपना जायजा लें। हकीकत तो यह है कि हमें हर वक्त अपनी जिंदगियों का जायजा लेते रहना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी का कौन सा काम सुन्नत के मुताबिक है, कौन सा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कम से कम जिन सुन्नतों को हम जानते हैं उस पर अमल का तो एहतमाम होना चाहिए। और तीसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो हमें नास बवायक लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों से मामून रहे। मामून रहे का मतलब यह है कि किसी को कोई खतरा कोई डर इस आदमी के मुताल्लिक ये ना हो कि मुझे इससे कोई तकलीफ पहुंचेगी। देखो अरे ये बोलने का एक अंदाज है, एक तो है महफूज रहना और एक है मामून रहना। महफूज रहने का मतलब ये है कि किसी को हमारी जात से तकलीफ न पहुंचे। आपने ये नहीं फरमाया कि उसकी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, बल्कि यूं फरमाया कि लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों से मामून या बेखतर रहे, निडर रहे, है ना, किसी को कभी कोई डर खतरा ही ना हो कि इससे मुझे। बाल लोग वो होते हैं जो तकलीफ तो नहीं पहुंचाते लेकिन उनका मिजाज, उनका नेचर, उनकी तबीयत की बनावट ऐसी होती है कि पास रहने वाले हर वक्त खतरा महसूस किए रहते हैं कि मालूम नहीं ये क्या कर डाले, है ना। बाद लोग आते हैं वहां जरा मुझे दुआ कर देना, पड़ोस में कभी क्या है, कोई पड़ोसी तकलीफ है, पड़ोस आज तक तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, कहवावे नहीं उसका कब क्या कर डाले भाई, वो तो कहवावे नहीं है ना बात। हालांकि आज तक तकलीफ महफूज है वो, लेकिन मामून नहीं है, बेखतर नहीं है। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलागत पर कि आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया। आप है ना, आपकी जो तालीमात है ना वो तो ऐसी है कि किसी मुसलमान को आप आपकी जात से या ना किसी भी दूसरे मुसलमान से कोई तकलीफ पहुंचने का खतरा भी ना हो, डर भी ना हो। हदीस में आता है उस जमाने में आमतौर पर तीर वगैरह लोगों के पास होते थे, वो लेके चलते थे, वो तो तिरकश में होते थे, और तिरकश का मतलब यह है कि वो चमड़े का थैला होता था, उसमें तीर और वो थैला वो कंधे पर लटका हुआ होता। आपने किसी जंगली आदमी की तस्वीर देखी होगी ना, तो उसके हाथ में क्या, उसके थैला लटका हुआ है, उस पर तीर अंदर नजर आ रहे हैं और कमान भी साथ में होती है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये लोग तीर हाथ में पकड़ कर चलते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ताकीद फरमाई कि कोई आदमी अगर तीर हाथ में पकड़ कर चले तो उसके जो सिरे हैं नोक वाला हिस्सा यूं पकड़ के ना चले, समझा कि नहीं, यूं पकड़ के ना चले, यूं लेके ना चले। क्यों, जब एक आदमी बजमे के अंदर से हाथ में तीर यूं लेकर के चलेगा तो सामने से जितने भी लोग आ रहे हैं हर एक को क्या होगा, डर लगेगा, पता नहीं लग ना जाए। जैसे आप देखते हैं कभी साइकिल पर कोई आदमी कोई चीज ऐसी लंबी लगा के चल के लेके जाता है ना, तो जितने भी लोग वो जरा डरते हैं, हट जाते हैं, कहीं भूल से हमको लग ना जाए, खतरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तीर ले जाने की भी इजाजत, आपने क्या तालीम दी कि अगर इस तरह हाथ में पकड़ के ले जाना है तो यूं लेकर जाओ, यानी उसकी जो नोक है उसको नीचे, ताकि कोई भी देखेगा तो उसको खतरा महसूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी पाकीज़ा तालीम दी कि हमारी जात से किसी को जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचने का खतरा भी दिल में ना हो। आज हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की जरूरत है, आज हमारी जात से लोगों को कैसी कैसी तकलीफें पहुंचती है। पराए तो पराए हैं, दूर की बात है, अपने घर के लोगों को, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को। बाल लोगों का हाल तो ये होता है कि घर के लोग तंग हैं उससे, वो जब घर में आता है ना तो दिल ही दिल में पना मांग, ए अल्लाह ये बला कहाँ आ गई, जल्दी से वापस जा। ये आज हमारे समाज में ये किसी को परवाह नहीं। बाल लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाए बगैर उनका खाना नहीं हजम। आप बतलाइए कि कयामत के रोज क्या हाल होगा, अल्लाह ताला उनसे कैसे नाराज होंगे। हमारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो हमको ऐसी तालीम दी कि किसी को हमारी तरफ से तकलीफ पहुंचने का खतरा और डर भी ना हो। इसी को फरमाते हैं वामिनन नासो फवाए कहू, अगर ये तीन काम हम कर लें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो क्या है, जन्नती है। अल्लाह तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक और एहतमाम नसीब फरमाए हैं। है तो चीजें बहुत आसान, लेकिन आज हमने अपने आप को जिन बुराइयों का आदि बना रखा है उसकी वजह से इन चीजों पर अमल करना हमको मुश्किल मालूम होता है। अल्लाह हमें तौफीक दे, दुआ कर लो।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअददि मा तुहिब्बु व तरदा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم نے تو اپنی زندگیاں ایسی بنا رکھی ہیں کہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، ہمارا کوئی لمحہ گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، اے اللہ ہمیں تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایسا طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تو ہم سے پیار کرنے لگے، اے اللہ اس طرح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری ذات سے تیرے کسی ادنا بندے کو بھی کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے، اے اللہ روزی کے معاملے میں بھی ہم حلال ہی کا اہتمام کرنے والے ہوں، اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت کی پیروی، سنت کا اتباع ہمیں نصیب فرما، اسی پر تو ہم کو زندہ رکھ اور اسی پر تو ہم کو موت عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ
اللہ۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔